प्यार ले लिए दिल की ज़रूरत होती है, और जो हमेशा अपने शातिर दिमाग की सुनता हो, उन जैसे लोगों के लिए प्यार सिर्फ और सिर्फ व्यापार होता है, जिससे वो बस अपना फ़ायदा निकालते हैं, जैसे तुम निकालती आई हो। अर्जुन की बात का निया कोई जवाब ना दे सकी। अर्जुन ने गहरी सांस छोड़ी और आगे कहना शुरू किया, यू नो व्हाट, ये हम इंसानों की फितरत होती है कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो हम अपने लिए सबसे बेहतर चुनना चाहते हैं, पर जब हमसे सभी ऑप्शन छीन जाते हैं तो हमारे पास जो बचता है, जिसे हमने पहले भले ही ठुकरा दिया हो, पर उस वक्त जब हमारे पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो कहीं वो भी हमारा साथ ना छोड़कर चला जाए और कहीं हम तन्हा ना हो जाएं, ये सोचकर हम उसे अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लेते हैं। मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम इस वक्त बिल्कुल उसी सिचुएशन में पहुंच चुकी थी। पहले तुम्हारे पास ऑप्शन थे, तो अपने फ़ायदा देखने के चक्कर में, अपनी इच्छा और लालच की पूर्ति करने के लिए, तुम्हारे पास जो भी था उसे छोड़ती चली गई। पहले तुम्हें शान हैंडसम लगा, कॉलेज हंग था वो, तो कॉलेज में अपना स्वैग दिखाने के लिए तुमने शान को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया, ताकि सबको दिखा सको कि जो लड़का किसी लड़की के तरफ आंख उठाकर देखता तक नहीं है, वो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तुम्हारा दीवाना बना, तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। और तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तुम्हारे उस झूठे प्यार को शान सच मान बैठा और पड़ गया तुम्हारे प्यार में। पर जब तुम अंश से मिली तो तुम्हें उसके साथ होना ज्यादा फायदेमंद लगा, और अपने सुनहरे भविष्य, नेम फेम के लालच में तुमने शान का प्यार भरा दिल तोड़ दिया, और अंश को भी उसी तरह अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया जैसे शान को फंसाया था। पर फिर तुम्हारी मूवी फ्लॉप होने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने तो घाटे का सौदा कर लिया, अंश तो अपने साथ साथ तुम्हें भी ले डूबेगा, और तब तुम्हारी मुलाकात इत्तेफाक से मुझसे हो गई। तुम्हें नया शिकार मिल गया था, इंडिया के जाने माने प्रोड्यूसर का इकलौता बेटा, जो कुछ वक्त पहले ही अब्रॉड से अपनी पढ़ाई करके आया था। हैंडसम था, उसमें तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचने का जरिया नजर आने लगा, और तुमने एक बार फिर अपने स्वार्थ के लिए किसी के प्यार भरे दिल को तोड़ दिया, तो दूसरे को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया। अपने हर सपने को तुमने मेरे जरिए पूरा किया। इतने सालों तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल करती रहीं, मेरी भावनाओं के साथ खेलती रहीं। तुम्हारी नज़रों में ना कभी मेरी कोई अहमियत थी और ना ही कभी मेरे प्यार की तुम्हें कोई कदर रही। अफसोस कि तुम्हें कभी मैं और मेरी फीलिंग्स नज़र ही नहीं आई, तुम्हें हमेशा अपना स्वार्थ नज़र आया, तुम्हें हर रिश्ते में हमेशा अपना फ़ायदा ढूंढा। जब तक तुम्हें मेरे साथ रहना फ़ायदेमंद लगा, तुम इस नाम के या ये कहूँ कि मतलब के रिश्ते को झेलती रहीं, और जैसे ही तुम्हें एहसास हुआ कि अब तो शान मुझे बर्बाद करने वाला है, तो तुमने मुझसे दूर जाने और फिर से शान को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाना ठीक समझा। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए तुमने उसे फिर से एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहा, और उसके लिए तुमने ना सिर्फ धोखे से मुझसे और डैड से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाए, बल्कि मुझसे डिवोर्स पेपर्स पर भी साइन करवा लिए। तुम आज जिस रिश्ते की दुहाई मुझे दे रही हो, उसे तुमने अपने ही हाथों से तोड़ा था, और अपनी गिरी हुई हरकतों से तुमने प्यार शब्द को शर्मसार कर दिया था। तुम तो इतना नीचे गिर गई कि जो बच्चा दुनिया में आया तक नहीं, तुमने उसकी जान लेने से पहले भी एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हें कभी से किसी की परवाह नहीं रही, तुम्हें हमेशा से तुम्हें तुम, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने ही नजर आने, और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुमने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। और अफसोस कि आज भी तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। शान के लिए तुमने मुझे छोड़ने का फैसला लिया, पर अब जब शान तुम्हें ठुकरा कर जा चुका है और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तो तुम्हें मेरी याद आ गई। कोई और नहीं मिला तो अब तुम्हें मेरी जरूरत महसूस होने लगी। इतने सालों में तुम्हें मुझसे ना तो मोहब्बत हुई और ना ही कभी मेरा प्यार नजर आया, पर आज अचानक ही तुम्हारे अंदर मेरे लिए भावनाएं जाग उठी। इसे चाहत नहीं, जरूरत कहते हैं, पर मैं कोई ऑप्शन नहीं हूँ कि कोई नहीं मिला तो मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे इस झूठे प्यार के जाल में फंसकर एक बार अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका हूँ, दोबारा वही गलती करूँ इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, तुम तो मेरी नजरों में इतना गिर चुकी हो कि मैं तुम पर अपनी मोहब्बत तो क्या नफरत भी जाया नहीं करना चाहता। तुम्हें आज भी मुझसे मोहब्बत नहीं है, कोई नहीं है अब तुम्हारे पास, इसलिए अब तुम्हें मैं नजर आने लगा। पर तुम्हें भले मेरी जरूरत हो, पर मुझे अब अपनी जिंदगी में तुम नहीं चाहियो। तुम्हारा ना मुझसे कोई रिश्ता है और ना ही मेरे बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना है, इसलिए मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहना तुम। मैं अपने बच्चे पर तुम्हारी परछाई तक नहीं पड़ने देना चाहता। तुम्हारी ज्यादा पाने की महत्वाकांक्षा ने आज तुम्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि तुम बिल्कुल तन्हा हो चुकी हो, और अब यही तुम्हारे गुनाहों की सजा है कि अपनी आगे की जिंदगी तुम अकेले काटो। महसूस करो इस दर्द को जो तुम आज तक दूसरों को देती आई हो। अर्जुन ने निया को आईना दिखा दिया था, जिसमें उसके आज तक किए सभी गुनाह साफ साफ नजर आने लगे थे। साथ ही उसे अपना फैसला सुना चुका था कि अब उसकी जिंदगी और घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। निया सर झुकाए सिसकती रही। इतने गुनाह किए थे कि अब अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो कुछ देर यूं ही रोती रही, फिर भीगी पलकें उठाकर अर्जुन को देखा। अब कुछ नहीं कहूंगी मैं। अगर यही मेरी सजा है तो मुझे ये सजा मंजूर है। मैं तुमसे और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। बस मुझे एक बार उसे जी भर कर देख लेने दो। बस एक बार उसे अपने सीने से लगाकर प्यार करने दो। इतना हक दे दो मुझे। उसकी विनती सुनकर अर्जुन एक पल को ठहरा, फिर अपना चेहरा फेरते हुए बोला, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मैं तुम जैसी औरत की परछाई भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहता। वो मेरी मजबूरी थी कि 9 महीने उसे तुम्हारे पास रहना पड़ा, पर अब एक पल के लिए भी मैं उसे तुम्हारे पास नहीं रहने दे सकता और ना ही तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। इसलिए अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ कदम मत रखना, क्योंकि अब तुम्हारा मुझसे और इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। जब तक ठीक नहीं हो जाती हॉस्पिटल में रहो और उसके बाद जहाँ मर्जी जाओ, पर दोबारा कभी लौटकर गलती से भी यहाँ मत आना। इसके बाद निया के पास कहने को शायद कुछ बचा ही नहीं था, या शायद उसको समझ आ गया था कि कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। एक उम्मीद के साथ यहाँ आई थी, पर अर्जुन की बातें सुनने के बाद हताश और निराश सी वापस लौट गई। पीछे खड़े हर इंसान की आंखें नम थी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह निया ने इन सभी को तकलीफ पहुंचाई थी, जिसका दुख उनके चेहरे पर झलक रहा था। पर अर्जुन अब एकदम शांत हो गया था। शान और निया की बात जानकर उसके परिवार वाले हैरान भी हुए थे, पर आरवी गंभीर बनी रही, क्योंकि शान पहले ही उसको सब बता चुका था। माहौल एकदम से गंभीर हो गया था। सृष्टि ने सबको देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, अब आप सब ऐसे चेहरे बनाकर क्यों बैठे हैं? घर में इतनी बड़ी खुशी आई है तो जश्न मनाना चाहिए। उसकी कोशिश को सभी समझ रहे थे। रश्मि ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर बोली, हाँ पार्टी तो होनी ही चाहिए, पर अभी नहीं, नामकरण वाले दिन पार्टी होगी। आज तो सबको उस दिन के लिए डिस्कशन करना है, ताकि उस दिन कहीं कोई कमी ना रह जाए। रश्मि ने सबका ध्यान दूसरी तरफ खींचा और सब वापस तैयारी के बारे में बात करने लगी। अर्जुन ने पलटकर सृष्टि को देखा तो वो मुस्कुरा दी। उसका मौन सपोर्ट पाकर अर्जुन का मन कुछ शांत हुआ।
सावित्री जी अंदर कमरे में बेबी के साथ थी, क्योंकि वो सो गया था। कुछ देर बाद शान अंशु को अपनी गोद में लेकर वापस वहां आया और आरवी के पास बैठ गया। आरवी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो शान ने पलटकर उसको देखा। आरवी हौले से मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कान शान के लबों पर भी सज गई। कुछ देर बाद सभी वहां से निकल गए और अर्जुन अपने बेटे के पास आकर बैठ गया। अमरजीत जी भी उसके पीछे चले आए और उसके सामने बैठते हुए बोले, अर्जुन, हम आपके फैसले में आपके साथ हैं। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है, पर अब जब आपका और निया का रिश्ता खत्म हो चुका है और आपका बच्चा भी आपके पास आ गया है, तो आपको अब दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। बच्चा अभी छोटा है, उन्हें माँ की जरूरत पड़ेगी। निया ना सही तो आपको उनके लिए दूसरी माँ लानी होगी। फिर अकेले जिंदगी बिताना आसान नहीं बेटा। हमारे साथ तो देवकी जी का प्यार और उनकी यादों का सहारा था, इसलिए हमने किसी तरह अपनी जिंदगी काट ली, पर आपके लिए ये आसान नहीं होगा। अर्जुन खामोशी से उनकी बात सुनता रहा, फिर बेबी के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा डैड। हर सौतेली माँ आरवी जैसी नहीं होती। किसी दूसरे के बच्चे को कोई इतनी आसानी से नहीं अपनाता, और अगर नाम के लिए अपना भी ले तब भी वो प्यार नहीं दे सकेगी जो मेरे बच्चे को उससे चाहिए होगा। उल्टा उसके आने से मेरे बच्चे की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। इससे बेहतर है कि मैं दूसरी शादी ना ही करूं। अब से ये मेरा सहारा है, मेरे जीने की वजह है, और मैं उसका माँ और बाप दोनों। अमरजीत जी अब और कुछ न कह सके, कुछ देर उसके पास रहे, फिर उठकर अपने कमरे में चले आए और देवकी जी की बड़ी सी तस्वीर के आगे खड़े होकर उन्हें नम आंखों से देखते हुए बोले, आज बहुत खुश हैं हम। आप भी बहुत खुश होंगी, आखिर दादी जो बन गई हैं, पर ये खुशी अभी अधूरी है। अर्जुन ने फैसला तो ले लिया है, पर हम जानते हैं कि इतना आसान नहीं है एक बच्चे की परवरिश अकेले करना। वो तन्हा रह गए हैं अब और उनकी बहुत चिंता है हमें। हमारे एक बच्चे की जिंदगी तो संवर गई, अब अर्जुन की जिंदगी में भी एक अच्छे जीवन साथी की चाहत है, ताकि वो भी अपने अतीत से बाहर निकले और खुश रहें।